सो बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या भक्ति करने से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और इस्कॉन का स्लोगन भी है, चैनलिंग भी है कि जपो और खुश। तो क्या हम लोग जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो हमारे घर की पारिवारिक शारीरिक मानसिक वित्तीय ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? और अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भक्त है, माला कर रहा है, जप कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, फिर भी उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे क्या निष्कर्ष निकालें? नहीं, सो अगर हम श्रीमद् भागवतम देखें जिसमें भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के चरित्र और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है, और अगर हम चैतन्य चरितामृत की ओर नजर डालें जिसमें भगवान कृष्ण के भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के चरित्र और शिक्षाओं पर अगर हम नजर डालें तो ज्यादातर भक्तों को बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा। जैसे पांडव हैं, पांडवों को विष पीना पड़ा भीम को, नहीं लाक्षाग्रह का सामना करना पड़ा, अपनी पत्नी उनकी जो पत्नी है द्रौपदी उसका चीरहरण देखना पड़ा, वस्त्रहरण देखना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, और वनवास में भी आराम से नहीं रह रहे थे, वहां पर भी कोई ना कोई विपत्ति आ रही थी, कभी दुर्वासा मुनि आ गए, है ना, और कभी जयद्रथ आ गया हरण करने के लिए द्रौपदी का, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर लगी रही पांडवों को। और फिर सबसे बड़ी विपत्ति आई कि अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ा, अपने बंधु बांधवों का, दादा गुरु सबका, भाइयों का वध करना पड़ा। प्रहलाद महाराज को देखें तो बोलते हैं कि बाढ़ खेत की रक्षा करती है, लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर देगी तो खेत को कौन बचाएगा? तो पिता पुत्र की रक्षा करने का दायित्व है पिता पर, लेकिन अगर पिता ही मारने पर उतार हो जाए तो कौन बचा सकता है? और प्रहलाद महाराज के साथ बिल्कुल यही हुआ, है ना, उसका अपना पिता, और कोई लल्लू पंजू नहीं था प्रहलाद महाराज का पिता, ऐसा व्यक्ति था कि इंद्र वायु अग्नि ये सब थर थर कांपते थे हिरण्यकश्यपु के सामने। ऐसा व्यक्ति अपने बेटे को मारने पर उतारू हो जाए तो बच्चे का क्या भविष्य है, क्या रक्षा हो सकती है? और एक बार नहीं अनेक बार मारने का प्रयास किया। उसके बाद भी चलो जब ध्रुव महाराज अपने पिता ने उठा के फेंक दिया गोदी से नीचे, सौतेली माँ से अपमान सहना पड़ा, क्षत्रिय के लिए अपमान सहना मृत्यु से बड़ा माना जाता है, क्षत्रिय अपमान नहीं सहता है ना। हमारी तरह नहीं है कोई भी आया बेइज्जती करके चला जाए, क्षत्रिय बहुत बुरा मान जाते हैं, मरने मारने को काबू में रखते। और उसकी सौतेली माँ ने कह भी दिया सुरुचि ने कि अगर पिता की गोदी में बैठना है तो पहले तुझे मरना पड़ेगा और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तू जिसकी गोदी में चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो बैठ पाएगा, नहीं तो नहीं बैठ सकता, भाग जाए यहां से। चलो सारी बातें हो गई, भक्ति की, भगवान के दर्शन हो गए, राजा बन गए, फिर भी मुश्किलों ने सामना नहीं छोड़ा। उसके भाई को यक्षों ने मार दिया, फिर यक्षों से लड़ाई शुरू कर दी, नहीं एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। चैतन्य चरितामृत में देखो तो उनके एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त उनको तो सूली पे चढ़ाने लगे थे फांसी पे, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐन मौके पर आके बचा लिया उनको। हरिदास ठाकुर नामाचार श्री हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था उनका, और हम उनको नामाचार्य क्यों बोलते हैं क्योंकि रोज 3 लाख नाम लेते थे भगवान का, और नाम लिए बिना कुछ खाते पीते नहीं थे वो, है ना, और पूरे एकाग्रचित होकर जप करते थे। जहां जाते थे वहीं पर हरि नाम की महिमा का प्रचार कर देते थे। जो चैतन्य भागवत में लिखा है बड़े से बड़ा नास्तिक उनको देख के वैष्णव बन जाता था, इतनी पावर थी उनके अंदर हरिदास ठाकुर। लेकिन क्या हुआ, वो काजियों काजी थे वो उसके अगेंस्ट हो गए हरिदास ठाकुर के, उन्होंने बोला यार ये तो मरवाएगा, जहां जाता है भक्त बना देता है ये, आज ये एक है जो मुसलमान होकर हिंदू हिंदुओं का पालन कर रहा है, कल को ये और 1 लाख खड़े कर देगा, हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो भाग के गए नवाब के पास, उन्होंने बोला इसको समझाओ भैया, इसके कर ठिकाने लगाओ, पूरा इतना महान मुस्लिम धर्म है नष्ट कर देगा। तो उसको पकड़ लिया, हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया उन लोगों ने, नवाब ने सैनिक भेजे, हरिदास ठाकुर को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, कल तुम्हारी सुनवाई होगी, राजा के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, तो जेल के कैदी मिले हरिदास ठाकुर से, ये भी बहुत अद्भुत घटना है, है ना, बहुत ही अद्भुत घटना है। तो जेल के अंदर जो कैदी है वो सुखी रह सकते हैं, हाँ आप सब तो कोशिश कर रहे हो रहने की, हम सब भी तो जेल में ही बंद हैं। अब प्रॉब्लम है दीवारें नहीं है इस जेल की, तो हमें लग रहा है हम आजाद हैं, लेकिन एक्चुअली में तो हम सब भी जेल में फंसे हुए हैं, नहीं, सबके गले में और पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, दिख नहीं रही, एक कदम बाहर नहीं उठा निकाल सकते आप, जो आपका दायरा है उसी के अंदर चलना पड़ेगा। है किसी में ताकत आपके यहां अपने दायरे से बाहर निकल के दिखाओ, ये कैद नहीं है तो और क्या। और हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है, अपनी मनपसंद सब्जी बना के खा लेना या मनपसंद टीवी सीरियल देख लेना, इसको हम आजादी बोल देते हैं। ये है हमारे लिए आजादी। ایکچولی میں ہمیں آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا. خیر تو وہ سارے پریشان تھے قیدی, انہوں نے کہا ایک مہان بھکتارا ہے, ان کے درشن سے ہمارے پاپ کٹ جائیں گے, ہمیں اس جیل سے چھٹکارا مل جائے گا. تو جیسے ہری داس ٹھاکر کو لے کے آئے تو سارے قیدی ان کے چرنوں میں گر پڑے اور پرنام کیا ان کو. تو ہری داس ٹھاکر نے ان سب پہ کرپا درشٹی ڈالی اور ان کو بولا جیسے تم ہو اب ویسے ہی بنے رہو. تو قیدی سن کے خوش ہوئے کہ پریشان ہوئے؟ خوش ہوئے کہ پریشان ہو گئے؟ پریشان ہو گئے, مکھ ملن ہو گئے, بالکل چہرے لٹک گئے ان کے. کہا ہم تو ایسا نہیں رہنا چاہ رہے, ہم تو جیل میں نہیں رہنا چاہ رہے, یہ آپ نے کیسا وردان دے دیا ہمیں, یہ وردان ہے کہ شراپ ہے؟ تو ہری داس ٹھاکر نے کہا آپ میرے آشیرواد کو سمجھ نہیں پائے, میں نے آشیرواد کچھ اور دیا ہے آپ کو, آپ اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہو. جب آپ لوگ میرے سامنے آئے تھے تو آپ کی آنکھوں میں کرشن نام لینے کی للک تھی, آپ کے ہردے میں, آپ کے مکھ میں کرشن نام تھا. تو میں نے آپ کو یہ آشیرواد دیا ہے کہ یہ استھتی کہ آپ کے مکھ میں ہمیشہ ہری نام سشوبھت ہو, ایسی استھتی آپ کی ہمیشہ بنی رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جیل میں پڑے رہو, جیل کیا چیز ہے, ایک دو دن میں چھوٹ جاؤ گے تم سارے. بہت ادبھت گھٹنا ہے. کئی بار ہمیں سنت مہاتما آشیرواد دیتے ہیں, گرو آشیرواد دیتے ہیں, ہم سمجھ نہیں پاتے اس کو. ہم یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں ہمیشہ کہ جو گرو ہیں ہمیشہ میٹھی بات بولیں گے اور ٹھیک ہو, کچھ چاہیے تو نہیں. گھر میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کام دھندا ٹھیک چل رہا ہے, میرا آشیرواد ہے اور اچھا کام بن گیا ہے. لیکن گرو وہ اچھا گرو نہیں ہے جو اپنے ششیہ کے بارے میں چنتا نہ کرے, اپنے ششیہ کے آدھیاتمک لابھ کے بارے میں چنتا نہیں کرے. اور اگر ششیہ کے آدھیاتمک لابھ کے لیے اس کو کبھی کڑوی بات بولنی پڑے گی تو بولے گا, نہیں تو گرو کس بات کے. تو گرو کے پاس جانا چاہیے, لیکن جانے سمے یہ دھیان رکھو کہ گرو کے جو نردیش ہیں اس کو پالن کرنے کی ہمارے میں اتنی ونمرتا, اتنی سہن شکتی ہونی چاہیے گرو کی بات کو سمجھنے, نہیں. کچھ لوگ, گور کشور داس بابا جی مہاراج ایک بہت مہان ویشنو ہیں, شیلا بھکتی سدھان سرسی ٹھاکر کے گرو ہیں, کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان کو ریکویسٹ کی کہ پلیز, کلکٹا سے گئے تھے, انہوں نے بولا پلیز ہم پر کچھ کرپا کیجیے. بھکتی سدھانتا سرسوی ٹھاکر نے کہا, اور گور کشور داس بابا جی مہاراج نے کہا اپنی واپسی کی ٹکٹ پھاڑ دو, وہ کٹیا ہے وہاں پر بیٹھ کے ہری نام جب شروع کر, یہ کرپا ہے میری بھاگ گئے. سو گرو کو یہ کہنا کہ مجھ پہ کرپا کرو اور اس کرپا کو سہنے کی شکتی بھی ہونی چاہیے, نہیں, सहने की शक्ति भी रखनी चाहिए, तो गुरु के पास जाओ और बोलो प्लीज मुझ पर कृपा करो। तो खैर अगले दिन हरिदास ठाकुर को, क्या कसूर था हरिदास ठाकुर का, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे। हरिदास ठाकुर को पकड़ के अगले दिन ले गए राजा के सामने। राजा ने कहा, अरे भाई तुम इतने महान मुस्लिम वंश में तुमने जन्म लिया है, तुम क्यों नहीं कुरान पढ़ते, तुम क्यों नहीं कलमा पढ़ते, ये क्या तुमने लगा रखा है, कोई अच्छा लगता है, चलो मान जाओ। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरा जोर ही नहीं चल रहा, क्या मान जाओ, को मेरे बस में थोड़े ना, मुंह में हाथ मटा लिया, कोई मेरे बस में थोड़े ना। चलो जो हो गया हो गया, माफी मांग लो और कल से अपना कुरान का पाठ शुरू कर दो, हम सब तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे। हरिदास ठाकुर ने बोला, अल्लाह और भगवान में क्या फर्क है, फर्क नहीं है, हम बना रहे हैं फर्क। ऊपर वाला हमारे हृदय में बैठा है, हम सब कठपुतली हैं, जैसे मर्जी नचा रहे हैं, और अगर भगवान अल्लाह खुदा अगर मुझसे हरि नाम बुलवा रहा है तो मेरा क्या जोर है उसके अंदर, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझसे करवा रहे हैं, मैं कैसे उसकी मर्जी के खिलाफ चला जाऊं। उसकी मर्जी होगी तो बड़े से बड़ा ब्राह्मण पंडित वो मुसलमान बन सकता है, क्या नहीं हो सकता। राजा ने बोला, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कैसे बोल देंगे नहीं हो सकता। तो राजा ने काजी को बोला, यार बात तो सही कह रहा है। काजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसी चीज से तो हम डरते हैं, जिसके पास जाता है उसी का दिमाग घुमा देता है, इसको सजा दोगे तो बात बनेगी, नहीं तो खुदा के खौफ से डर के रहना, खुदा का कहर तुम पे आएगा। तो राजा ने फिर उसको समझाया, हरिदास ठाकुर को फिर से समझाने की कोशिश की, चलो मान जाओ, छोड़ो, कलमा पढ़ लो, माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो राजा ने काजी से पूछा, तुम क्या चाहते हो, इसको इतना पीटा जाए कि मार खाते खाते इसके प्राण छूट जाए तो लोगों को सबक मिलेगा। राजा ने कहा, भाई अगर कोई हिंदू चावल को छू दे, हम वो चावल नहीं खाते, तुमने उसी का धर्म जाके पकड़ लिया तुमने। तो राजा ने फरमान जारी कर दिया, पकड़ के ले जाओ, और 22 मुख्य बाजार थे, उन्होंने बोला जाओ और इतना पीटना हर एक बाजार में ले जाके सबके सामने उदाहरण बना के रख दो, इतना पीटो तो प्राण छूट जाए, और अगर ये नहीं मरा तो तुमको मार दूंगा, अगर ये नहीं मरा तो तुमको मार दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को ये बात राजा बोल दे, क्या करेगा वो, पूरी ताकत झोंक देगा, पूरी शक्ति लगा देगा, नहीं। और ऐसा ही हुआ, पूरी शक्ति लगा दी उन सैनिकों ने, और कोड़ों से लाते घूसे बहुत मारा हरिदास ठाकुर, हर बाजार में लेके गए और बहुत मारा। हरिदास ठाकुर बिल्कुल मौन बने रहे, और चैतन्य भागवत में लिखा है कि उनको बिल्कुल भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था, थक गए सैनिक उनको मारते मारते। हरिदास ठाकुर को बाल भी बांका नहीं हुआ तो वो सैनिक उनके चरणों में गिर गए, बोला प्लीज मर जाओ क्योंकि तो अगर तुम नहीं मरे तो राजा हमें मार देगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं आने दूंगा, और एकदम से योग समाधि में चलेगा। हरिदास ठाकुर शरीर से जीवन के सारे लक्षण खत्म हो गए। तो गाजी ने कहा इसको दफनाएंगे नहीं क्योंकि अगर दफना दिया तो बहिष्ट मिलेगी, तो पानी में फेंक दो आगे भटकता रहेगा। ये पानी में फेंक दिया, हरिदास ठाकुर थोड़ी देर बहते रहे गंगा जी में, फिर तैर के नदी के उस पार चले गए और क्या करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया। क्या उन्होंने शिकायत की भगवान को, ये क्या कर रहे हो, मेरा क्या कसूर, क्या यही फल मिलता है आपका नाम लेने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के एक और महान भक्त कोलावेचा श्रीधर इतने गरीब थे, इतने उनका कपड़ा फटा हुआ था कि पैबंद लगाने की जगह नहीं थी उसमें, कहाँ लगाएं, पैबंद से तो कमीज बनी हुई थी, इतने फटे हुए कपड़े थे, कुछ सामान नहीं था, एक ही लोटा था, बिल्कुल कुचला हुआ लोटा, ठीक से खड़ा भी नहीं कर सकते, वही संपत्ति थी उनकी। झोपड़ी की छत नहीं थी, छत थी लेकिन ना के बराबर थी, बारिश हो जाए तो पूरी रात भीगते रहते, कभी भरपेट खाना नहीं खाया, एकदम सूखी, पूरी रात भगवान का नाम लेते थे और लोग गालियां देते थे, ना खुद सो रहा है और ना हमें सोने। तो चैतन्य महाप्रभु इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक बार श्रीवास आंगन में बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत एक अद्भुत लीला प्रकट की चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला प्रकट की और वो महाप्रकाश लीला 21 घंटों तक चली, उसको सप्त प्रहरीय लीला कहते हैं। सप्त का मतलब सात, प्रहर का मतलब 3 घंटे, 7 या 21, 21 घंटों तक चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा ऐश्वर्य प्रकट किया भक्तों को, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लुकाव छुपाव के, जैसे उनका ऐश्वर्य है चैतन्य महाप्रभु का, हर भक्त की इच्छा अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। और जिस भक्त की जैसी इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की, उसने पूरा जी भर के अपने मनोवांछित इष्ट की चैतन्य महाप्रभु में दर्शन किए और उनका रूप माधुरी का पान किया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला जाओ जाके हरिदास ठाकुर को सामने लेके आओ, हरिदास ठाकुर पीछे खड़े थे। तो हरिदास ठाकुर को लेके आए, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्हें 22 बाजारों में ले जाकर पीटा गया लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ, क्यों? और चैतन्य महाप्रभु ने अपना उत्तरीय उठा के फेंक दिया और अपनी पीठ दिखाई। चैतन्य महाप्रभु की पीठ पूरे कोड़ों के निशानों से सनी पड़ी थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जितने कोड़े तुम्हारे शरीर पर पड़ रहे थे मैंने अपने शरीर से तुम्हारा शरीर ढक दिया था, तुम्हें मैंने आभास तक नहीं होने दिया और तुम्हारे सारे जो दुख कष्ट मैंने अपने शरीर पर झेले। तो दिखने में दिखता है कि एक भक्त को बहुत सारे दुख हो रहे होते हैं, लेकिन अगर उस भक्त से पूछा जाए वो पूरा निश्चिंत होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, कुछ दुख मलाल नहीं होता, अपनी स्थिति से परेशान नहीं होता भक्त। क्यों परेशान नहीं होता? क्योंकि उसको पता होता है कि भगवान ने वो परिस्थिति विशेष रूप से उसके शुद्धिकरण के लिए बनाई है, और किसी भी परिस्थिति में उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता था। भगवान सर्वश्रेष्ठ पिता हैं और अपने बच्चे के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे कल्याणकारी है, भगवान वही काम करेंगे। इतना दृढ़ विश्वास होता है भक्त का, इसीलिए भक्त कभी भी दुखों से विचलित नहीं होता। भक्त के लिए शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख कोई मायने नहीं रखते। भक्त सिर्फ एक ही बात से परेशान रहता है, कहीं भगवान का नाम लेना ना भूल जाओ, कहीं भक्तों का संग ना छूट जाए। भक्तों का संग छूट गया तो भगवान का नाम ज्यादा देर तक नहीं ले पाऊंगा। सो हमें, और इस्कॉन में आप बोलोगे ये तो बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, अभी इस्कॉन में ऐसे भक्त मौजूद हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 साल की भक्ति उनकी है, और उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनको कुछ भक्तों को कैंसर भी है, कई भक्तों को कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या आप अपनी परिस्थिति में कुछ बदलाव चाहते हो, वो बोलते हैं हम परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक है, हम अपनी इस परिस्थिति को किसी भी वस्तु से बदल लेने चाहेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति भगवान कृष्ण की देन है, भगवान कृष्ण का उपहार है। सो कभी भी दुखों से विचलित नहीं हो, भगवान कृष्ण हमारे शरीर से कुछ सरोकार नहीं है, ये भौतिक प्रकृति से बना है, भगवान का भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान की भिन्न शक्ति है, भूमि रापो अनडो वायु खम मनोबुद्धि अहंकारम इति, ये भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये आठ शक्तियां जो है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये भगवान की भिन्न शक्ति है, भगवान नहीं देखना चाहते इसको, भगवान का कोई सरोकार नहीं है, छाया की तरह भगवान की आज्ञा का पालन करती है, छाये व्यस्त भुवनानि विभर्ति दुर्गा। भगवान का सरोकार है हमसे, हमसे मतलब हम जो आत्मा है, जो परमात्मा के अंश है, भगवान का उससे सरोकार है। भगवान शरीर से कुछ सरोकार नहीं रखते, कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर की हम कितनी देखभाल कर ले, कितने सुगंधित तेल लगा दे, लास्ट में इसको खत्म होना ही है, इस शरीर को ज्यादा देर तक बचा के नहीं रख सकते। एक किसी संत की बात सुन रहा था, बोल रहे थे ऐसा मकान है जिसको लास्ट में आग लगानी पड़ेगी, नहीं बचा सकते इसको आग लगाने से, कुछ इलाज नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये शरीर का आखिर क्या अंत है, बोल रहे हैं या तो राख बन जाएगा शरीर, या मल बन जाएगा जानवरों का, जंगल में मर गए जानवर खा जाएंगे, खा के क्या हो जाएगा, मल में बदल जाएंगे, नहीं, या कीड़े खा जाएंगे। तो ऐसे जिसका अंत निश्चित है कि इसमें से कुछ ना कुछ होना ही है,
उसके ऊपर इतनी आसक्ति करने का क्या पॉइंट है, है ना? उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि दुख आ रहे हैं नहीं आ रहे फर्क नहीं पड़ता, जैसे सर्दी गर्मी आ रही है फर्क नहीं पड़ रहा। हमें पता है अभी बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है सर्दी आ जाएगी। बहुत तेज सर्दी आती है, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, मौसम बदल जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखता, जैसे सर्दी गर्मी है सुख और दुख वैसे ही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ दुख को झेलना है, सुख को भी झेलना है। ऐसा नहीं है कि दुख परेशान करते हैं सुख भी परेशान करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सुख आ जाएगा आपके पास सबसे पहले क्या होगा, भगवान को भूल जाएंगे, टाइम ही नहीं रहेगा। नहीं, इसीलिए भगवान ये नहीं कह रहे कि दुख को झेलो, भगवान कह रहे हैं सुख को भी झेलो, सुख और दुख में समभाव से रहो। बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आज सुख है कल हट जाएगा, आज दुख है कल खत्म हो जाएगा। जब तक जीवन है ये साथ लगे रहेंगे। आवश्यकता है अपना ध्यान एक जगह पे एक लक्ष्य पे लगाने की, जैसे अर्जुन कुछ नहीं दिख रहा उसको, चिड़िया की आंख दिख रही है। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा, किसी को चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, किसी को पैर दिख रहे हैं, किसी को पेड़ दिख रहे हैं, अर्जुन को सिर्फ आंख ही दिख रही है। वो कह रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लक्ष्य के आसपास जो भी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से हमारा उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर शाश्वत जीवन की प्राप्ति करना, एक ऐसे जीवन को प्राप्त करना जहां पर कोई दुख नहीं है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के इर्द गिर्द जो भी ताना बाना बुना हुआ है उस पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा लक्ष्य से ध्यान हट जाएगा। आसपास जो भी हो रहा है होने दो, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके चलो। और ये हम कर पाएंगे भक्तों के साथ रह के गंभीरता से पूरे मनोयोग से भक्ति करके। लल्लू पंजू भक्ति से बात नहीं बनेगी। अगर आप सोचो थोड़ा बहुत करते रहते हैं बात बन जाएगी, नहीं बनेगी, अभी बता रहा हूं, जाना है उठ के चले जाओ। जब तक पूरे निष्ठा के साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूरे ध्यान से जब तक हम अपना मन अपने लक्ष्य की ओर नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं समझ लेंगे कि यही जीवन है, हमने कृष्ण प्रेम की प्राप्त करनी है, हमने गुरु को संतुष्ट करना है, तब तक बात नहीं बनेगी। जब हम ये चीज समझ लेंगे हमें सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे हरिदास ठाकुर को चैतन्य भागवत में लिखा है बिल्कुल भी दुख का अनुभव नहीं हो रहा था, कुछ पीड़ा नहीं हो रही थी, उनका ध्यान भगवान के चरण कमलों में निवेशित था। हम भी अगर भक्ति करेंगे अच्छे से, कोई गारंटी नहीं है कि सुख और दुख नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन ये गारंटी जरूर मैं देता हूं आपको कि अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे तो आप ना सुख से प्रभावित होगे और ना दुख से प्रभावित होगे। ये अगर हमने स्थिति को प्राप्त कर लिया तो इसी को बोलते हैं सिद्धावस्था, कि भगवान के चरण कमलों में अचल अटल अडिग निष्ठा प्राप्त हो गई। अब कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण है उससे हमारा कनेक्शन हो चुका, जो चीज महत्वपूर्ण है हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा एफर्ट्स, पूरी हमारे कार्य उसी और लग गए, फिर हम सुख दुख से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कब सुख आया और कब दुख आया, कब सुख चला गया, कब दुख चला। हरे कृष्ण।